हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। वेदांश के इस सवाल पर अंबिका ने उसकी ओर देखकर धीरे से सिर हिलाया। वेदांश को तुरंत मामला समझ आ गया। वो गुस्से में दांत पीसते हुए उठा और बोला, प्रतीक, ये तूने बिल्कुल ठीक नहीं किया। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वेदांश उठकर खड़ा हुआ, जबकि अंबिका जमीन पर बैठी रही। वो बाहर निकलने ही वाला था कि उसकी नज़र अंबिका पर पड़ी और वो रुक गया। वो अंबिका के पास गया और उसके कंधे पर हाथ रखा। अंबिका चौंक गई। वेदांश ने उसे उठाया, अपने सामने खड़ा किया और अंबिका का हाथ अपने हाथों में थाम कर कहा, मुझे पूरी बात बताओ। अंबिका ने सवाल किया, तुम मेरी बात पर यकीन करोगे? वेदांश ने गंभीर होकर पूछा, यकीन न करने की कोई वजह नहीं है मेरे पास, तुम बस बताओ। वेदांश की बात सुनकर अंबिका में आत्मविश्वास आया। उसने आंसू पोंछे, गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। उसने वेदांश को पूरी बात बता दी, प्रतीक उसके कमरे में कैसे आया था, क्या क्या बोला था, कैसे उसकी ओर बढ़ रहा था और कैसे अंबिका ने वॉशरूम में जाकर खुद को बचाया था। ये सब सुनते हुए वेदांश की मुट्ठियां इतनी कस गई कि उसके नाखून हथेली में गड़ने लगे। गुस्से में उसने जबड़े भींच लिए और उसकी आंखों में खून उतर आया। उसने अपनी उंगलियां अंबिका की उंगलियों में फंसाते हुए कसकर उसका हाथ पकड़ा और उसे कमरे से बाहर निकल गया। अंबिका कन्फ्यूज होकर उसकी ओर देखती रही। उसकी आंखों में आंसू थे, सब कुछ धुंधला सा लग रहा था। वेदांश का हाथ थामे उसे ऐसा लगा जैसे वेदांश को पूरी तरह उसकी बात पर यकीन है और वो उसके साथ है हर कदम पर। अंबिका उसी तरह वेदांश की ओर देख रही थी। वेदांश ने इतने दिनों में पहली बार उसे कमरे से बाहर निकाला था अपने साथ और अपना हाथ पकड़कर। वेदांश अंबिका को लेकर सीधा प्रतीक के कमरे में आया। वेदांश पहले ही गुस्से में उसे धक्का दे गया था जिससे उसके हाथ में चोट आई थी। उसकी माँ उसके पास बैठी उसकी चोट पर बर्फ से सेंक रही थी। तभी वेदांश दोबारा आया, इस बार अंबिका के साथ। प्रतीक ने मन ही मन कहा, अब तो तू गया बेटा। प्रतीक का गला सूख गया। वेदांश ने अंबिका की ओर देखते हुए पूछा, यही था वो? वेदांश को बात कन्फर्म हो चुकी थी, पर कन्फर्मेशन के लिए उसने अंबिका की ओर देखकर ये सवाल किया। अंबिका प्रतीक को देखकर घबरा गई और वेदांश का हाथ और कसकर पकड़ लिया, दूसरा हाथ वेदांश के कंधे पर रख दिया। वेदांश उसकी ओर देख रहा था। उसके एक्शन से वो समझ गया कि अंबिका घबरा रही है। उसने गंभीर आवाज में कहा, मेरे रहते तुम्हें और किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अंबिका ने धीरे से सिर हिलाया। वेदांश ने आगे बढ़कर एक जोरदार मुक्का प्रतीक के चेहरे पर जड़ दिया, उसकी माँ के सामने। उसकी बुआ तुरंत उसे रोकने लगी, लेकिन वेदांश ने तुरंत अपने बॉडीगार्ड को बुलाया। उन्होंने बुआ जी को पकड़कर अलग कर दिया। घर में और कोई नहीं था। वेदांश ने प्रतीक के गले पर हाथ रखकर कसकर पकड़ लिया और उसका गला दबाना शुरू किया। हिम्मत कैसे हुई तेरी मेरे कमरे में जाकर अंबिका से वो सब बोलने की और तूने उसके नज़दीक जाने की कोशिश की, कमीने? वेदांश के पकड़ कसती जा रही थी। प्रतीक की आंखें बाहर निकल आई थी, मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। अंबिका वेदांश के पीछे खड़ी थी, प्रतीक की ओर गुस्से भरी नजरों से देख रही थी। प्रतीक की हालत खराब थी, लेकिन अंबिका को उस पर तरस नहीं आ रहा था। उसे अभी कुछ देर पहले हुआ इंसिडेंट याद था और वो इतनी घबरा गई थी कि प्रतीक उसके साथ कुछ भी गलत कर सकता है और वो बच नहीं सकती। इसलिए वो नहीं चाहती थी कि प्रतीक के साथ कोई रियायत बरती जाए। लेकिन प्रतीक की माँ वेदांश की बुआ ने अपने बेटे की हालत देखकर रोते हुए चिल्लाया, वेदांश बेटा, बेटा छोड़ दे उसे, उससे गलती हो गई, वो ऐसा नहीं है। हो सकता है इस लड़की को गलत फहमी हुई हो या ये झूठ बोल रही हो। मुझे पता है, तुझे भी पता है, तेरा भाई है वो। छोड़ दे उसे वेदांश, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। लेकिन वेदांश ने उनकी ओर देखा तक नहीं। वो गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन बॉडीगार्ड उनके आगे खड़े थे। बुआ जी को वेदांश और प्रतीक तक नहीं आने दे रहे थे। तभी वेदांश ने एक झटके से प्रतीक को छोड़ा और प्रतीक जमीन पर गिर गया। वेदांश ने उसकी बॉडी पर लात मारते हुए कहा, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था जब तू वहाँ पर था और इतना घबराया हुआ लग रहा था। लेकिन उस वक्त मैं खुद ठीक हालात में नहीं था, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया और तेरी बातों में आ गया। लेकिन तू, तेरे जैसे इंसान जिंदा नहीं बचना चाहिए। तूने अंबिका पर गंदी नजर डाली। वेदांश के इतने गुस्से में देखकर प्रतीक को अब बचने का कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा था। उसके मुंह और नाक से खून निकल रहा था, पूरे चेहरे पर नीले काले निशान पड़ चुके थे वेदांश के मुक्कों की वजह से। लेकिन उसे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि अंबिका की वजह से वेदांश उसकी जान लेने तक को तैयार हो जाएगा। इनमें से किसी को भी मिशिका की मौत के बारे में पता नहीं था। वेदांश उस वक्त एक अलग ही मानसिक स्थिति में था। घर वापस आने के बाद अंबिका की बातें सुनना उसके लिए और भी ज्यादा परेशान करने वाला था और अपना सारा गुस्सा वो इस वक्त प्रतीक पर ही निकाल रहा था। प्रतीक को मारते हुए वेदांश के हाथों से भी खून निकलने लगा था, लेकिन उसे दर्द बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा था। वो इतने गुस्से में था। उसका गुस्सा देखकर अंबिका को भी डर लगने लगा था, लेकिन उसने बीच में कुछ नहीं बोला। वो वहीं खड़ी रही। सामने खड़ी प्रतीक की माँ ने हाथ जोड़ते हुए कहा, छोड़ दे, मेरा एक ही बेटा है वेदांश, छोड़ दे उसे। और है कौन ये लड़की तेरे लिए जो इसके लिए तू अपने भाई की जान लेने पर उतारू हो गया है? और इस जैसी लड़कियाँ तो हजार मिल जाएंगी तुझे, लेकिन मेरा बेटा, छोड़ दे उसे, वो मर जाएगा। प्रतीक की माँ ने जैसे ही ये बात बोली, वेदांश ने एक झटके से अपना चेहरा मोड़कर उनकी ओर देखा और बोला, एक शब्द भी और नहीं निकालिएगा अपने मुंह से, क्योंकि आपको पता भी है आपके बेटे ने क्या करने की कोशिश की है। उसने अंबिका के ऊपर गंदी नज़र डाली और सिर्फ इतना ही नहीं, उसकी इज्जत पर हाथ डालने की भी कोशिश की है। उसकी बुआ ने तुरंत जवाब दिया, कोई इज्जत भी है इस लड़की की? ये रोज रात को तेरा बिस्तर गर्म करती है तो क्या हुआ? अगर उसे मेरे बेटे ने भी इसकी तरफ देख लिया तो इतना क्यों बुरा लग रहा है? कौन सा ये तेरी पत्नी है? क्या लगती है ये तेरी? इसके लिए तो मेरे बेटे को मारेगा वेदांश, वो भी इतनी बुरी तरह। उनकी बातें अंबिका को तीर की तरह चुभ रही थीं, लेकिन उसे एहसास हुआ कि एक तरह से वो सच भी बोल रही थी। अंबिका खुद भी इस बारे में सोचती थी, तो उसे यही ख्याल आते थे। उसे पता था कि जो कुछ भी उसकी जिंदगी में चल रहा है, उसके बाद कोई भी उसे इज्जत भरी नजरों से नहीं देखेगा। ये बात सुनते ही अंबिका चेहरे पर हाथ रखकर वहाँ से भाग गई। वेदांश अपनी बुआ का जवाब देने ही वाला था, क्योंकि उसे कोई जवाब तुरंत समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसने तुरंत उनके सामने आकर कहा, वो कोई भी हो, आपको उसके बारे में कुछ भी बोलने का हक नहीं है। मैंने किसी को कोई हक नहीं दिया, और इसने इतनी हिम्मत की मेरे कमरे में जाकर, मैं इसे तो नहीं छोड़ूंगा। इतना बोलते हुए वेदांश ने अपनी गन निकाली और प्रतीक की ओर तान दी। वो पहले ही अधमरा और बेहोश होकर जमीन पर पड़ा हुआ था। ये देख उसकी बुआ रोते हुए गिड़गिड़ाने लगी, नहीं नहीं वेदांश, छोड़ दो उसे, माफ कर दो, माफ कर दो। जो कुछ भी मैंने कहा, मैं तुम्हें गुस्सा नहीं दिला रही थी, मैं बस, ऐसा कुछ कभी नहीं होगा आगे से। हम यहाँ से दूर चले जाएंगे, वापस अपने घर, कभी यहाँ नहीं आएंगे, बस मेरे बेटे को जिंदा छोड़ दो। उसकी बुआ ये सब कुछ बोल रही थी, लेकिन वेदांश दिल नहीं पसीजा। वो इस वक्त प्रतीक की जान लेने पर उतारू था, और उसे शायद तभी सुकून मिलता, इसलिए उसने अपनी गन लोड की और ट्रिगर दबा दिया। एक तेज आवाज हुई और उसके बाद कमरे में सन्नाटा छा गया।
कहाँ गई अंबिका? क्या वेदांश ने उसे जाते हुए नोटिस नहीं किया? क्या लगता है आपको, अंबिका वहाँ से भागने में कामयाब होगी, या फिर वेदांश के लोग उसे फिर से पकड़ लेंगे? और अब आगे क्या करेगा वेदांश? क्या अंबिका को छोड़ेगा या फिर नहीं? बताइए कमेंट में, कैसा था आज का एपिसोड? और प्रतीक तो गया, मेरा मतलब है मर गया ना बेचारा, मिशिका के बाद दूसरी डेथ। वैसे मेरी स्टोरी में जल्दी किसी की डेथ नहीं होती थी, लेकिन अब क्या करें, सब कुछ बदलना पड़ रहा है आप लोगों के टेस्ट के हिसाब से। पहला ट्विस्ट है आज के एपिसोड में, और दूसरा ट्विस्ट मिलेगा कल के एपिसोड में। और आज का एपिसोड हमने जल्दी दिया है, टाइम पर, और ऊपर से बड़ा एपिसोड भी है, लेकिन फिर भी कोई एप्रिशिएट नहीं करेगा। लेकिन एक दिन का अगर गैप हो जाता है तो आप सब हमें कितना बोलते हो।